परिशिष्ट 15, जापान की 21 मांगे, जापान्स 21 डिमांड्स। पृष्ठ संख्या 194। 18 जनवरी 1915 को जब जापान ने शांतुंग और प्रशांत प्रायद्वीपों में स्थित जर्मनी के अधिकार क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर लिया, तब उसने चीन के समक्ष सामूहिक मांगे प्रस्तुत की। इन मांगों का उद्देश्य अधिक से अधिक चीनी प्रदेशों को जापानी साम्राज्य के अधीन लाना था। यह समूह 5 वर्गों में विभाजित था और इसमें कुल 21 मांगे थी। प्रथम श्रेणी की मांगे शांतुंग से जुड़ी हुई थी। इस प्रदेश के भविष्य को लेकर जापान जर्मनी के साथ जो भी समझौता करता, चीन को उसे स्वीकार करना था। यह मांग की गई कि चीन इस प्रदेश के किसी भी हिस्से को पट्टे पर नहीं देगा और इस प्रदेश में जापान को रेलवे लाइन बिछाने का अधिकार दिया जाएगा। जापान ने यह मांग भी की कि चीन कुछ प्रमुख शहरों को संधि बंदरगाहों के अंतर्गत जापान के लिए खोलेगा। दूसरी श्रेणी की मांग पश्चिमी मंचूरिया और पूर्वी मंगोलिया के आंतरिक हिस्सों से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर जापान को रेलवे और बंदरगाह 25 वर्षों के लिए पट्टे पर दिए गए थे। यह मांग की गई कि उसे बढ़ाकर 99 वर्ष कर दिया जाए। इन बंदरगाहों के नाम पोर्ट आर्थर और टालियन थे। इन सभी प्रदेशों में जापानी निवासी व्यापार, उत्पादन या कृषि के लिए जमीन खरीद या पट्टे पर ले सकते थे। जापानी अनुमति के बिना चीन इस प्रदेशों में राजनीतिक, वित्तीय या सैनिक सलाहकारों की नियुक्ति नहीं कर सकता था। चीन किसी तीसरी शक्ति को या उसके नागरिकों को वहाँ कोई भी अधिकार नहीं दे सकता था। जापानी अनुमति के बिना किसी दूसरे राष्ट्र को रेलवे निर्माण का अधिकार भी नहीं दिया जा सकता था। तीसरी श्रेणी में यह मांग की गई कि हान एन फिंग लोहा कार्य कंपनी को जापान और चीन की संयुक्त कंपनी में बदल दिया जाए। इस तरह जापान को पर्याप्त मात्रा में और लगातार लोहा प्राप्त हो सकता था। चौथी श्रेणी में जो मांगे रखी गई उनके अनुसार चीन किसी भी देश को अपने समुद्री किनारों पर प्रायद्वीप, बंदरगाह या खाड़ी नहीं दे सकता था। यह अधिकार केवल जापान को ही मिलना था। अंतिम श्रेणी में 7 मांगों को रखा गया था। यह मांगे इस तथ्य को स्पष्ट करती थी कि जापान चीन को पूरी तरह से अपने अधिकार में लाना चाहता है। इन मांगों के अनुसार पहला, चीन को राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक क्षेत्रों में जापानी सलाहकारों को ही नियुक्त करना था। दूसरा, चीन को जापानी अस्पतालों, स्कूलों और चर्चों को अपने देश में जमीन खरीदने का अधिकार देना था। तीसरा, जापानी धर्म प्रचारकों और विशेष बौद्ध प्रचारकों को धर्म प्रसार का अधिकार देना था। चौथा, चीन के महत्वपूर्ण इलाकों में संयुक्त पुलिस नियुक्त करने का प्रावधान था। पांचवा, चीन के लिए यह अनिवार्य था कि वह 50% युद्ध सामग्री केवल जापान से ही खरीदे। यदि वह शस्त्रागार स्थापित करना चाहे तो वह भी संयुक्त होने चाहिए। छठा, यांगत्ज घाटी में जापान को रेलवे का निर्माण कार्य करने का अधिकार होगा। सातवा, फुचियेन प्रांत में रेलवे निर्माण, खदान बनाने या बंदरगाहों पर कार्य करने के लिए यदि चीन पूंजी उधार लेना चाहे तो जापान की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ये सभी मांगे नजायज, शर्मनाक और आपत्तिजनक थी। ये मांगे चीन में जापान के साम्राज्यवादी इरादों को दर्शाती थी। यदि इन्हें स्वीकार कर लिया जाता तो चीन जापान के अधीनस्थ देश की श्रेणी में ही आ जाता। इन मांगों के संदर्भ में सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि इसे राजनयिक स्तर पर प्रकट नहीं किया गया था, बल्कि गुप्त रूप से इसकी सूचना चीन के राष्ट्रपति युवंस रखाए को इस धमकी के साथ दी गई थी कि यदि इन मांगों को अस्वीकार किया गया तो जापान उन देशों की सहायता करेगा जो उनकी सत्ता का पतन चाहते थे। इन मांगों को प्रस्तुत करने का ढंग भी आपत्तिजनक था, क्योंकि इन्हें चीन के विदेशी मंत्रालय के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इन मांगों को जिस कागज पर लिखा गया था उस पर बंदूकें बनी हुई थी। जब इन मांगों का पता पेचिंग से वहां की जनता को लगा, तब जापान का विरोध देश के अंदर वहां के निवासियों और बाहर अमेरिका द्वारा किया गया, परंतु किसी में विदेश मंत्री कातो का विरोध करने का साहस नहीं था। मई के महीने में इन मांगों को लेकर दोनों देशों के बीच होने वाली बहस के बाद कातो ने कुछ समय के लिए पंचम श्रेणी की मांगों पर विचार विमर्श को स्थगित करना स्वीकार कर लिया। 25 मई 1915 को चीन और जापान के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप जापान को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जिसकी उसे इच्छा थी। जापान अब एशिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। इस संधि से यह स्पष्ट हो गया कि जापानी साम्राज्यवाद किस सीमा तक जा सकता था। चीन के लिए यह 21 मांगे विदेशी आक्रमण का प्रतीक बन गई। चीनी छात्रों ने राष्ट्रीय भावना प्रकट करते हुए 4 मई 1919 को विरोध प्रकट किया और जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ उस समय की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई।